नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं करिश्मा राय और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार संजीव कुमार। संजीव जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। डेकेथलॉन में भारत के तेजस्वीन शंकर ने डेविड नोबल रिले में शानदार जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज तैराकी, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और कुश्ती के मुकाबले हुए और भारतीय टीम ने वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले के लिए क्वालिफाई किया। तो श्रोताओं, सबसे पहले इंडियन प्रीमियर क्रिकेट लीग की बात करेंगे। मुकाबला जारी है और इसी के साथ आपको बता दें कि आज पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जा रहा है और आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। तो इसी के साथ जिस तरीके के स्कोर निकल के सामने आ रहे हैं उसमें लग रहा है कि आज का जो खेल है वो किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे संदीप जी?
देखिए, T20 क्रिकेट में शुरुआत में कहना बहुत 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 आसान नहीं होगा कि मैच किस तरह से अगर आप देखें तो शुरुआत इनकी बहुत खराब रही थी और केवल चार ओवर दो गेंदों पर इनके तीन विकेट निकल गए थे 29 रन पर। और फिर से उसके बाद जो अभी कार्यवाहक कप्तान हैं ईशान किशन सनराइजर्स के, उन्होंने फिर कंसोलिडेट किया है और उन्होंने पारी को वहां से संभाला है और 27 गेंदों पर 51 रन बनाकर खेल रहे हैं। और जिस तरह से वर्ल्ड कप में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें उनका प्रदर्शन था, उस लय को उन्होंने बरकरार रखा है और उनका बखूबी साथ दे रहे हैं हेनरिक क्लासन, जो कि बहुत ही नाम के हिसाब से क्लास के बल्लेबाज हैं इस फॉर्मेट में। तो अभी जिस तरह से इन्होंने 12वें ओवर में, अभी पूरा नहीं हुआ है, 97 रन बनाए हैं तीन विकेट पर, हाई स्कोरिंग मैदान रहा है। यहां पर जो आईपीएल का रिकॉर्ड है इसी चिन्नास्वामी स्टेडियम के मैदान पर बना है, तो उम्मीद की जाती है कि 200 के आसपास का स्कोर बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम रूल आउट नहीं कर सकते कि 200 बनाने के बाद भी सुरक्षित स्थिति में होगी सनराइजर्स की टीम।
बिल्कुल, लेकिन सनराइजर्स की टीम की अगर बात करें तो अक्सर उन्हें काफी संतुलित टीम माना जाता है, लेकिन क्या उनकी बॉलिंग आरसीबी के बैटर्स पर भावी हो सकती है? आगे किस तरीके से ये मुकाबला चेंज हो सकता है?
देखिए, ये सीजन का पहला मैच है और इनकी तरफ हमेशा से एक समस्या तो जरूर रही है कि ये बल्लेबाज बहुत अच्छे हैं इनके पास, हाई स्कोरिंग मैचेस ये इनके जो है बल्लेबाज रन बनाते हैं और होते हैं जब ये बैटिंग करते हैं तो, लेकिन बड़े स्कोर बनाने के बाद भी कई बार ये डिफेंड नहीं कर पाते हैं या चेज करने की स्थिति में लड़खड़ा जाते हैं। तो बल्लेबाजी तो इनकी अच्छी है, जैसे देखिए कि टॉप ऑर्डर में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो गए, नीतीश रेड्डी भी आउट हो गए, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति में फिलहाल है। लेकिन जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, खुद कप्तान इनके पैट कमिंस जो कि नियमित कप्तान हैं वो अच्छे फास्ट बॉलर हैं, उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जो उनकी बॉलिंग है, जो मैं देख रहा हूं कि उस बॉलिंग लाइनअप पर एक दबाव होगा। भुवनेश्वर कुमार और अभी आरसीबी की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, जैकब डफी ने और भुवनेश्वर कुमार ने, ठीक इसी तरह का प्रदर्शन उनके बॉलर्स को करना पड़ेगा वरना ये मुश्किल हो सकता है, क्योंकि पिछले सीजन में अच्छी बैटिंग के बावजूद इनके बॉलर्स ने निराश किया था।
लेकिन जब पहला मैच होता है तो क्या लगता है दोनों टीमों पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव होता है पहले मैच में?
जी बिल्कुल, देखिए इस फॉर्मेट में तुरंत तुरंत खेल बदलता है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जयदेव उनादकट जो उनके तरफ बॉलर है, जो कि लास्ट सीजन के टॉप जो विकेट टेकर्स हैं उनमें वो शामिल रहे, इसके अलावा एहसान मलिंगा एक बॉलर है कि श्रीलंका के, वो एक सरप्राइज पैकेज हो सकते हैं। हर्षल पटेल पहले जो कि आरसीबी में खेलते थे वो भी एक अच्छे बॉलर है, लेकिन ओवरऑल कितना रन उनको मिलता है और किस तरह से इस हाई स्कोरिंग पिच पर बॉलिंग करते हैं वो देखने वाली बात होगी।
बिल्कुल, लेकिन अभी तक क्या लग रहा है कि अगर अभी देखा जाए तो मोमेंटम बदलना हो तो दूसरी टीम को क्या करना होगा और इस स्थिति में मैच की दिशा किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है?
देखिए फिलहाल तो वही मैंने कहा कि 12 ओवर में 111 रन है, अच्छा स्कोर है। अगले 8 ओवर में मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से स्कोर कर रहे हैं उनका रन रेट 9 से ज्यादा का है और आखिरी का जो 4-5 ओवर होते हैं उसमें 10 12 11 से भी स्कोर बनता है और ऐसी स्थिति में मुझे अभी जो ये दो बल्लेबाज हैं और आने वाले जो बल्लेबाज हैं इनकी तरफ तो मुझे ये लग रहा है कि ये 200 पार कर सकते हैं। अगर 200 पार करते हैं तो एक बेहतर स्थिति में होंगे बावजूद इसके कि हाई स्कोरिंग मैदान है ये।
बिल्कुल, तो श्रोताओं आपको एक अपडेट दे दें कि ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 13वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। बढ़ते आगे डेकेथलॉन में भारत के तेजस्वीन शंकर ने टेक्सास में 2026 डेविड नोबल रिले में 7,947 अंकों के साथ शानदार जीत दर्ज की है। यह उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है जो पिछले राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहतर है। इस जीत के साथ उन्होंने इस सीजन की धमाकेदार शुरुआत की जिसमें उन्होंने 100 मीटर लॉन्ग जम्प शॉर्ट पुट और पोल वॉल्ट जैसी विभिन्न स्पर्धाओं में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल किया है। तो संजीव जी इस जीत पर आप क्या कहेंगे, एक शानदार जीत दर्ज की है तेजस्वी शंकर ने।
बिल्कुल, कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से खास तौर पे हमारे एथलीट अगर सफलता हासिल करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो उन्होंने जो स्कोर किया डेकाथलन में, बताना चाहूंगा कि ये 10 इवेंट होते हैं इसलिए इसको डेकाथलन कहा जाता है और बहुत ही टफ माना जाता है और एक स्ट्रांग मैन का एक तरह से खिताब मिलता है कि वो 10 इवेंट में पॉइंट्स मिलते हैं और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड के लेवल तक पहुंचने की बात है तो 9000 प्लस वहां पे जो ओलंपिक्स या वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड कप पे होता है एथलेटिक्स में वहां पर स्कोर होता है। हालांकि जो इन्होंने बेस्ट बनाया लेकिन जो नियमता ये है कि जो जिन रनिंग इवेंट्स में या जंप इवेंट में विंड की स्पीड होती है जो 2 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से एक स्पीड मापी जाती है, अगर उससे ज्यादा सपोर्ट कर रही है अगर आपको हवा तो उस रिकॉर्ड को नहीं माना जाएगा। बावजूद इसके मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से तेजस्वी शंकर जो कि पहले सिर्फ हाई जंप करते थे इन्होंने 10 इवेंट में पिछले भूलना नहीं होगा कि पिछले एशियन गेम्स के वो सिल्वर मेडलिस्ट हैं और अभी जिस तरह से उन्होंने बेस्ट बनाया है वो पिछले एशियन गेम्स में जो चाइना के गोल्ड मेडलिस्ट थे उनसे बेहतर स्कोर किया है उन्होंने। तो आज की स्थिति में अगर एशियन गेम्स में उतरते हैं वो तो माना जा सकता है कि वो सिल्वर जो था पिछली बार वो गोल्ड में तब्दील हो सकता है।
बिल्कुल, तो एक अच्छा मौका भारत के लिए है। बढ़ते आगे, वहीं छत्तीसगढ़ में चल रहे प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के चौथे दिन आज तैराकी, वेटलिफ्टिंग, फुटबॉल और कुश्ती के मुकाबले हुए। कर्नाटक 15 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखे है। वहीं ओडिशा 9 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है और असम 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। प्रस्तुत है ये रिपोर्ट।
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत हो रही तैराकी स्पर्धा के मुकाबले आज संपन्न हो गए। आज महिलाओं की 100 मीटर फ्री स्टाइल में ओडिशा की रितिका मिंज ने स्वर्ण पदक जीता। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में भी ओडिशा की ही अंजलि मुंडा ने स्वर्ण जीता है। वहीं महिलाओं के 4x100 मीटर मेडले रिले में ओडिशा की टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल में कर्नाटक के धोनीस एन ने स्वर्ण पदक जीता है। 50 मीटर बैक स्ट्रोक में असम के निबिर निलिम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। इसी तरह पुरुषों के 4x100 मीटर मेडले रिले में कर्नाटक की टीम ने स्वर्ण पदक हासिल किया। आज हुए वेट लिफ्टिंग के महिला वर्ग के मुकाबले में 69 किलोग्राम वर्ग में असम की डिम्पी सोनोवाल और 77 किलोग्राम वर्ग में छत्तीसगढ़ की निकिता ने स्वर्ण पदक जीता है। इसी तरह पुरुष वर्ग में 88 किलोग्राम में अरुणाचल प्रदेश के रुबा ताडू और 94 किलोग्राम वर्ग में अरुणाचल प्रदेश के ही लालू ताकू ने स्वर्ण पदक हासिल किया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पांचवें दिन कल रायपुर में हॉकी, वेटलिफ्टिंग और फुटबॉल के मुकाबले होंगे। सरगुजा में कुश्ती के मुकाबले खेले जाएंगे। छत्तीसगढ़ से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ स्पोर्ट्स स्कैन के लिए सरफिरोजी।
तो संजीव जी, लगातार एक के बाद एक अच्छा प्रदर्शन निकल के आ रहा है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से, और आज भी देखने को मिला कि किस तरीके से रितिका मिंज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो क्या कहेंगे कि जो तमाम ये खिलाड़ी हैं और स्टेट से निकल के सामने आते हैं, इनकी स्पर्धाएं कितनी महत्वपूर्ण होती हैं?
बिल्कुल, देखिए जो पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने अलग अलग विंटर गेम्स करवाए और कहे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स करवाए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के लेवल पे करवाया, और ये ट्राइबल पहले गेम्स हो रहे हैं, तो ये जनजाति क्षेत्र के जो हमारे एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। होता ये है कि देखिए, जब खिलाड़ी होते हैं उनको जितना ज्यादा प्लेटफॉर्म मिले, जितना ज्यादा उनको प्रतियोगिता मिले, उनके प्रदर्शन में निखार आता है। अगर आपने साल में पहले आप देखें तो कुछ साल पहले तक ये स्थिति थी कि किसी एक खेल में कोई खिलाड़ी है तो साल में 2-3 उसके मुकाबले हो गए तो बहुत है, लेकिन अब अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है जहां पर लगातार खेल हो रहे हैं और लगातार आपको परफॉर्म करने और जीतने का मौका मिल रहा है, अपने प्रदर्शन को सुधारने का मौका मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हीं खिलाड़ियों में से अगर देखें तो खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं और देश के लिए भी पदक जीत रहे हैं, तो ये ओवरऑल अगर कहें तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, और यही मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में इन्हीं खेलों से ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो हमें एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, ओलंपिक्स में मेडल दिलाएंगे।
बिल्कुल, अगर हम इस मुकाबले में देखें तो आज भी कई स्टेट के खिलाड़ी निकल के सामने आए। अरुणाचल प्रदेश के लालू ताकू ने स्वर्ण पदक जीता है, वहीं छत्तीसगढ़ के निकिता ने भी स्वर्ण पदक जीता है। तो अलग अलग स्टेट से अब जो मुकाबला हम देख रहे थे कि अभी तक शीर्ष पर लगातार हमारा जो कर्नाटक बना हुआ था उसे टक्कर देने की कोशिश तमाम स्टेट कर रहे हैं।
हाँ बिल्कुल, देखिए पहले था कि एक एक पर्टिकुलर एक या दो या तीन स्टेट का दबदबा होता था नेशनल लेवल पे खेल, अब ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए तो कुछ खेलों में कुछ स्टेट अच्छे हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि हर एक स्टेट से अब निकल के, उन स्टेट से भी निकल के सामने आ रहे हैं जहां पर पहले बहुत सारे खिलाड़ी नेशनल लेवल पे मेडल नहीं लेते थे, तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
बिल्कुल, वहीं चंडीगढ़ में आयोजित फर्स्ट इंटरनेशनल इनविटेशन और थर्ड नेशनल ओपन रिले प्रतियोगिता 2026 में भारतीय रिले टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बोत्सवाना में होने वाले वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता में भारत बी टीम ने 4x100 मीटर मिक्स रिले में 42.30 सेकंड के समय के साथ नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारत ए टीम ने 42.34 सेकंड के समय के साथ रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोनों टीमों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपनी अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ए टीम ने सीनियर मिक्स 4x400 मीटर रिले में भी दमदार प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को हराकर स्वर्ण पदक जीता। प्रतियोगिता में भारत के अलावा नेपाल, मालदीव, भूटान और श्रीलंका की टीमों ने भी हिस्सा लिया था। जूनियर वर्ग में भी भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा रहा। तमिलनाडु की अंडर-20 महिला टीम ने 4x100 मीटर रिले में 48.38 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। वहीं चंडीगढ़ की टीम ने अंडर-20 मिक्स 4x100 मीटर रिले में 45.44 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता। बोत्सवाना में इस वर्ष मई में होने वाली प्रतियोगिता में कुल 6 रिले स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 4x100 मीटर और 4x400 मीटर पुरुष और महिला वर्ग के अलावा मिक्स रिले स्पर्धा भी शामिल है। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
और इसी के साथ फिडे कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदें एक बार फिर से युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा पर टिकी हुई हैं, और कल से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट को सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में से एक माना जाता है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और खेल खबरों के साथ। संजीव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, तमाम खेल खबरों पर बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार।